वासुदेवाय।
और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भगवान के अवतरण के साथ साथ भगवान के जो भक्त हैं, जो धर्मपरायण हैं, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो हम मेरे ख्याल से हमारे पिछले चार सेटिंग से ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ले रहे हैं और आज इसका पांचवा भाग रहेगा। मेरे ख्याल से एक और भाग लेना होगा हमें, क्योंकि हमारे वैष्णव टीकाकारों ने इस श्लोक के ऊपर इतनी व्याख्याएं की हैं कि हम जितना खोद खोद कर देखना चाह रहे हैं इस श्लोक के अंदर क्या है, मर्म क्या है, लग रहा है कि कोई अंत ही नहीं है केवल इस एक श्लोक के तात्पर्य का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो हमने यदा यदा ही इसकी व्याख्या प्रारंभ की थी। जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। अब यहां पर भगवान केवल इतना नहीं बता रहे हैं कि वो कब प्रकट होते हैं, केवल इतना नहीं बता रहे हैं कि क्यों प्रकट होते हैं। यहां पर जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की भी व्याख्या भगवान कर रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण है जानना। इसलिए हमने ये जो पहली लाइन है इसके ऊपर इतनी चर्चा की है, क्योंकि आजकल आवश्यकताओं को बताना या उसकी परिभाषा देना कि वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं एक जीव की, आत्मा की, वो जानना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने ये जो पहली लाइन है इसके ऊपर बहुत भूरी भूरी चर्चा की है। तत्पश्चात हमने पिछले हमारे सत्रों में धर्मस्य ये शब्द की व्याख्या हम ले रहे हैं, क्योंकि बीच में एक हफ्ते का गैप आ गया था, इसलिए हम चाहते हैं कि एक शॉर्ट रीकैप हो जाए। तो पांच परिभाषाएं श्री प्रभुपाद के अनुसार धर्म की, डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, धर्म इज लाइक एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर ह्यूमंस, इट एक्सप्लेन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ द सोल, धर्म इज अ कल्चर विच डिस्क्रिमिनेट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स, धर्म फाइनली मीन्स प्रिपरेटरी कोर्स टू प्रिपेयर फॉर डेथ एंड सिक्योर नेक्स्ट लाइफ। तो हमने हमारे बलदेव विद्याभूषण टीकाकार जो हैं गीता के, उनकी व्याख्या ली धर्म। उनके अनुसार उन्होंने कहा है, जो धारण करता है, हमारी रक्षा करता है मृत्यु और मृत्यु के पश्चात, वह वस्तु जो मृत्यु के समय अथवा मृत्यु के पश्चात हमारी रक्षा करे, वो है धर्म। और हमने ये चार लेवल्स या चार स्तर मनुष्य जीवन के प्रगति के तरक्की के, रिपेंट रिपेयर प्रिवेंट प्रिपेयर, और धर्म का जो पालन करते हैं उनकी श्रेणियां बताई गई है कि जो ये समझ लेते हैं कि मेरा जीवन यदि मरम्मत की स्थिति में है, रिपेयर यदि मरम्मत की स्थिति में है तो धर्म के द्वारा उसकी मरम्मत कैसे की जाए, और एक बार मरम्मत हो गई है उसके पश्चात फिर से ये मनुष्य जीवन हमारा बिगड़े न, उसके लिए क्या करना है, फिर से हमें हमारे धर्म ग्रंथ खोलने हो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चार स्तरों को जानना। तत्पश्चात फिर हमने ये प्रसिद्ध हमारे उपनिषदों से जो सूत्र है धर्म के ऊपर कहा गया, इसे लिया, धर्मो रक्षति रक्षितः, तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो धर्मो रक्षति रक्षितः ये एक ऐसे सिद्धांत को स्थापित कर रहा है जिसे कहते हैं पारस्परिक सिद्धांत, या अंग्रेजी में द फिलॉसफी ऑफ रेसिप्रोसिटी। पारस्परिक सिद्धांत का अर्थ होता है साध और प्रतिसाद। हम जो भी क्रियाएं करते हैं, चाहे हमारे शब्दों से, कर्मों से या हमारे मन से, उसकी प्रतिक्रिया निश्चित है। तो हमारा जीवन केवल क्रिया और प्रतिक्रिया, साध और प्रतिसाद। तो ये जो हमने सूत्र लिया उपनिषदों से कि धर्म रक्षित रक्षित, इसका अर्थ यह है कि यदि अधर्म का कोई रक्षण कर रहा है या अधर्म का कोई पालन कर रहा है तो अवश्य ही अधर्म उसका भक्षक बनेगा। तो इसलिए केवल इतना जानना काफी नहीं है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो आजकल कलयुग में अधर्मो रक्षति भक्षितः, फ्लिप साइड क्या है उस लॉजिक का, अधर्मो रक्षति भक्षितः। इसलिए हम देखते हैं कि जो रक्षक हैं या जो रक्षक होने चाहिए वो भक्षक हो रहे हैं। महाभारत में ये कथा है कि जब युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी संभाल लिए थे तो एक दिन एक व्यक्ति आया, हस्तिनापुर का नागरिक। युधिष्ठिर महाराज अब तक राजमहल में पहुंचे नहीं थे, वो एक समस्या को लेकर आया और उसकी समस्या बहुत विचित्र थी। हालांकि वो एक नागरिक नहीं था, वो एक महानुभाव था, नागरिक के रूप में आया ये सिद्ध करने के लिए कि कलयुग की शुरुआत या कलयुग के लक्षण क्या होने वाले हैं। तो इस नागरिक ने आकर, भीम खड़े हुए थे राजमहल के बाहर, युधिष्ठिर महाराज ने उनको खड़ा रखा था, तो इसने पूछा कि एक समस्या है, उस समस्या का समाधान आप दीजिए। तो भीमसेन इन्होंने पूछा, क्या समस्या है? मैंने आज सुबह देखा कि मेरे खेत की जो दीवार है, जो मेरे खेत की रक्षा करने के लिए मैंने खड़ी की थी, वही दीवार मेरे खेत को खा रही है। जिस दीवार को मैंने मेरे खेत की रक्षा करने के लिए वहां पर बनाया था, वही दीवार मेरे खेत को खा रही है। इस पहेली को बुझाओ, ये एक पहेली थी। तो तब भीमसेन, इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो वो युधिष्ठिर महाराज के पास गए। युधिष्ठिर महाराज को पूछा कि ये क्या माजरा है। ये दीवार जो कि रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, उन्हीं खेतों को खा रही दीवार। तो युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो धर्मराज है, वो समझ गए। उन्होंने कहा यह है कलयुग का लक्षण। कलयुग में जो सरकारी पद पर बैठेंगे, जो सरकारी पद पर बैठकर ये पोर्टफोलियो अपना बनाएंगे कि मैं रक्षक हूं, वही बनेंगे भक्षक। यह है कलयुग का लक्षण। तो युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन से कहा, समझ लो वो व्यक्ति जो आया था इस पहेली को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए, वो व्यक्ति मूर्तिमान कली था। मूर्तिमान कली आया था ये बताने के लिए कि धर्मराज युधिष्ठिर, अब आपके दिन भर गए, अब आपका युग खत्म होने जाने वाला है, और अब मेरी सत्ता है यहां पर। और कली, मूर्तिमान कली की सत्ता क्या है? जो रक्षक के रूप में भक्षक बने, वो है मूर्तिमान कली की सत्ता। तो यहां पर यही बताया गया है कि जब हम ऐसे धर्म को नियुक्त करेंगे जो धर्म हमारी रक्षा करे, तब जाकर जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उसको हम सिद्ध कर पाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः। और उसके पश्चात फिर हमने अंत में, हमारे पिछले सत्र में, धर्म की तुलना एक फोटो फ्रेम से की थी। क्यों? क्योंकि एक फोटो फ्रेम, जो भी वो सुंदर चित्र हैं, दो चीजें ये फोटो फ्रेम करती हैं। एक तो उसकी रक्षा, और उसके साथ साथ उसकी जो सुंदरता है उस सुंदरता को और बढ़ाती है, फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड फॉर प्रोटेक्शन। सो सिमिलरली धर्म शुड बी लाइक दैट। इवन दो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड टू बी वेरी ब्यूटिफुल एंड रेयर, बट इट नीड्स टू बी protected and its beauty needs to be enhanced by following dharma. तो ये है धर्मस्य शब्द की व्याख्या। अभी तक recap चल रहा था भाई। तो चर्चा के विषय, इसलिए मैंने वो आज निकाल दिया है, पता नहीं आज वो पूरी चर्चा हो पाएगी कि नहीं, इसलिए केवल चर्चा के विषय कहा। भगवान ने अर्जुन को आज के श्लोक में कौंतेय नहीं पुकारा, धनंजय नहीं पुकारा, अर्जुन नहीं पुकारा। आज के श्लोक में भगवान ने बहुत सोच विचार कर अर्जुन को भारत नाम से पुकारा। ये अर्जुन का एक नाम है, भारत। क्यों? इसकी हम चर्चा करेंगे। धर्म की ग्लानि एवं अभ्युत्थानम, ये जो शब्द भगवान ने इस्तेमाल किए हैं श्लोक में, बहुत गूढ़ रहस्य है इसके पीछे। इसकी व्याख्या होगी, अधर्म की परिभाषा क्या है, और अंतिम लाइन में भगवान ने कहा है आत्मानम सृजामि, तो उनकी व्याख्या। हालांकि मेरे ख्याल से हमारे भाग 6 में उनका डिस्कशन जाएगा। तो सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को भारत इस नाम से पुकारा है। क्यों? कोई बता सकता है? जनरल नॉलेज। अर्जुन को ये नाम क्यों मिला? अर्जुन किसके वंशज? भरत। महाराज भरत के वंशज अर्जुन। तो यहां भगवान अर्जुन को कह रहे हैं भारत भगवान अर्जुन को भारत इसलिए बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम जिनके वंशज हो, राजा भरत के वंशज हो अर्जुन तुम, और राजा भरत ये केवल राजा नहीं थे, ये केवल किसी पद पे बैठे हुए कोई पद अधिकारी नहीं थे, ये राज ऋषि थे। भरत राज ऋषि थे जिन्होंने शस्त्र उठाए शास्त्र के आधार पर। राज ऋषि कौन होते हैं? वो क्षत्रिय होते हैं जो शस्त्र उठाते हैं शास्त्र के आधार पर, और जो अपनी राज सत्ता संभालते हैं शास्त्र के आधार पर। तो भगवान अर्जुन को ये याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तुम ऐसे भरतवंशी हो, तुम ऐसे राजा भरत के वंश में पैदा हुए हो, तो कम से कम अपने वंशज राजा भरत का मान रखते हुए तुम मेरी सहायता करो और धर्म की स्थापना करो। तो हम आज सबसे पहले देखेंगे कि ये जो भारत, हम लोग सब अपने आप को क्या कहते हैं? भारतीय। हिंदुस्तानी नहीं है हम, कौन है हम लोग? भारतीय। क्योंकि हमारे कहीं पर भी कोई भी वैदिक ग्रंथों में ये हिंदू शब्द है ही नहीं, आपने पढ़ रखा होगा ये सब। तो सबसे पहले भारत, तो इसका विभाजन यदि हम करें तो इन तीन अक्षरों से ये शब्द बना है, इसका विभाजन। तो बहुत सुंदर हमारे टीकाकारों ने बताया है कि भा र और त ये उल्लेख करता है भाव, राग और ताल। आपको लग रहा होगा क्या म्यूजिक क्लास यहां पर लेने वाले हैं? नहीं, इसके पीछे बहुत ही गूढ़ तात्पर्य है कि इस भारतवर्ष में संस्कृति जहां पर राग और ताल इसका समन्वय होता है, किसके साथ? भाव के साथ। जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आपने सुने होंगे, पहले हम सुनते थे सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ नृत्य होते थे, गीत होते थे, कथक। आपको पता है ये जो कथक, ये शब्द का अर्थ क्या है? वो नृत्य जो भगवान की कथा को दर्शाए उसे कहते हैं कथक। भरतनाट्यम, वो भी कहां से आया है? भारत शब्द से आया है, जिसमें जो भी हमारी संस्कृति, अब देखिए ये राग और ताल ये दर्शाता है मनुष्य जीवन को, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम इन्हें समझ पाते हैं। अर्थात हमारे टीकाकार कहते हैं कि भारत की ये जो उत्प्रेक्षा की गई है, भाव से राग और ताल का समन्वय का अर्थ है कि मनुष्य जीवन में, विशेष रूप से इस कलयुग में, हमें कीर्तन में भाग लेते हुए राग और ताल को हमारे भावना से युक्त क्या करना है? हमारे मनुष्य उद्देश्य को सिद्ध करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यदि हम केवल इस भारत शब्द को जिस देश में हम रहते हैं उसका अर्थ जानने की कोशिश करें, तो वो देश, हम उस देश के वासी हैं जहां पर कृष्ण भावना से हम सबको युक्त होना है। रथ का अर्थ है युक्त रहना, अनुरथ जैसे कहते हैं। तो यदि हम अपने आप को भारतीय बोल रहे हैं, यदि कोई हमसे पूछ रहा है भाई आप कौन से देश के निवासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, सही बात है। और गंगा क्यों बहती है? क्योंकि यहां भगवान ने अपने पुण्य भूमि का हेडक्वार्टर बनाया है इस भारत को। जैसे कोई वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो उसका एक एपिसेंटर होता है जहां से लावा निकलता है, वैसे ही भगवान ने इस पूरी सृष्टि में विशेष रूप से इस पृथ्वी पर भारत को वो एपिसेंटर बनाया जहां से धर्म का लावा निकलकर पूरे विश्व में, जैसे प्रभुपाद ने यहां से लावा निकलवाकर पूरे विश्व में ये धर्म को फैला दिया। दुर्भाग्यवश 2014 आज की स्थिति क्या है, जहां ऐसे ऐसे अवतार भगवान के और उनके प्रतिनिधि आकर गए, स्थिति क्या है आज हमारे भारत देश की। मैं सोच रहा था ये जो विभाजन हमने किया है भाव और रथ का, आज यदि हमारे टीकाकार भारत देश का विभाजन इन शब्दों से करना चाहें तो कहेंगे भा का अर्थ है भ्रष्टाचार। वो देश जो भ्रष्टाचार में युक्त है या लिप्त है, दुर्भाग्यवश एक हमारे भारतीय मंत्री जापान गए तो वहां के जापानी मंत्री ने इन भारतीय मंत्री को अपने बड़े महल में बुलाया, उनका सत्कार किया। इस महल को देखकर चकाचौंध रह गए हमारे मंत्री, पूछे भाई माजरा क्या है, रहस्य, इतना बड़ा महल कैसे? तो जापानी मंत्री उनको लेकर बाहर दिखाया, वो नदी देख रहे हो, दिख रही है वो नदी के ऊपर वो पुल दिख रहा है, 50% मेरा। 5 साल बाद भारतीय मंत्री ने उस जापानी मंत्री को बुलाया, आप आओ अभी, उससे 5 गुना बड़ा महल में उसका सत्कार किया। जापानी मंत्री अब चकाचौंध रह गया, वो पूछ रहा है क्या रहस्य भाई? तो हमारा मंत्री ले जाता है जापानी मंत्री को, दिखाता है, वो नदी दिख रही है, दिख रही है, वो पुल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हंड्रेड परसेंट बहुत टाइमली आया है ये वर्स। अगले ही हफ्ते आप जानते हैं 24 तारीख, कुछ महीनों पहले मैं बंबई गया था एक कार्यक्रम के लिए, तो वहां पर मुझे जो आज की केंद्र सरकार है उसके बारे में प्रश्न पूछे गए। तो एक ने प्रश्न पूछा, आपको क्या लगता है इस बार की केंद्र सरकार गिरेगी? मैंने कहा और कितना गिरना बाकी है। तो आपका मत क्या है? तो मैंने कहा देखो भाई, मैंने अपना अधिकांश जीवन वायुसेना की सेवा में, भारत की सेवा में बिताया, भारत मां की सेवा में, मदरलैंड कहते ना हम, भारत मां है। कोई भी और देश अपने देश को मां नहीं कहता, वो लोग के फादर अंकल वगैरह सब कहते रहते, हम लोग हमारी संस्कृति है ऐसा सत्कार हम हमारे देश का करते हैं, भारत को हम मां कहते। तो जब ये पूछा गया तो मैंने कहा मुझे एयरफोर्स में यह सिखाया था कि भारत मेरी मां है, किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि भारत मेरी मां का है। चलो समझ आ गया। तो भाई अभी आप पे ऊपर निर्णय है कि आपको भारत जो हमारी माँ है उनको जो हम समझ रहे हैं उनको स्थापित करना है या हमारी भारत को किसी की मां का बनाना है? तो यहां पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे भरतवंशी, कि तुम ऐसे वंश में पैदा हुए हो जहां जिस वंश की नींव बुनियाद केवल धर्म और कुछ नहीं, जो पैदा हुए तुम्हारे वंश में धर्म परायण इस पदवी को लेकर। तो इसलिए भगवान अर्जुन को इस नाम से पुकारते हुए अर्जुन को आह्वान कर रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने आप को पहचानो, अपने परिचय को पहचानो, अपने वंश को पहचानो, अपने खून को पहचानो। अब धर्म की ग्लानी, गांधी जी के प्रसिद्ध तीन बंदर, यहां से शुरुआत होती है धर्म की ग्लानी की। आज के श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं अवतरित होता हूं। अब बचपन से हमने इन तीन बंदरों के विषय में क्या कुछ नहीं सुना है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है गांधी जी के, बुरा ना देखना, बुरा ना बोलना, बुरा ना सुनना। अब हां, गांधी जी एक बहुत आदर्श हमारे इस पूरे देश के पिता रहे और उन्होंने अपने उदाहरण से हां ये सिखाया, परंतु कितने अब उनके इस प्रकार के अनुयायी बनकर कम से कम धर्म की ग्लानी न हो इसके लिए तो मदद कर रहे हैं, ये प्रश्न है। तो मैं जब ये तीन बंदरों के विषय में थोड़ा ये इनके जो इमेजेस में ढूंढ रहा था तो मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग इमेज मिला ये तीन बंदरों का। आई सॉ दैट, आई हर्ड दैट, आई एम गोना टेल। धर्म की ग्लानी यहां से शुरू होती है। धर्म की ग्लानी की शुरुआत क्या है कि हां मुझे जो नहीं देखना मैं देखूंगा, मुझे जो नहीं कहना या जो मुझे, वहीं से शुरुआत हो जाती है। मुझे जो नहीं सुनना है वो मैं सुन लूंगा, देख लूंगा और फिर दूसरों को बताऊंगा। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग इमेज लगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने जीवन में धर्म की ग्लानी अनुभव करता है, हम उसकी और उत्प्रेक्षा करेंगे ग्लानी का अर्थ क्या है। जब एक व्यक्ति, वन इंडिविजुअल, व्हेन ही स्लिप्स ट्रिप्स फ्रॉम द धार्मिक प्रिंसिपल्स, स्टिल इट इज नॉट सो डेंजरस, बट वेन ही स्टार्ट्स प्रोपोगेटिंग दैट, यहां पर क्या है, आई एम गोना टेल। जो जो मुझे अच्छा लग रहा है धर्म की ग्लानी की वजह से मैं उसका प्रचार प्रसार करूंगा। और भारत में इसी के वजह से हम देख रहे हैं कि न केवल धर्म की ग्लानी बल्कि धर्म नष्ट होते जा रहा है। इट इज लाइक अ सिंकिंग शिप, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वेन नो मोर विल बी सीन अनलेस वी प्रोटेक्ट। तो धर्म की ग्लानी, अब इसकी शुरुआत हमारे शास्त्रों में भी इस सुंदर कथा से बताई गई है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में धर्म की तुलना भगवान के वक्षस्थल से की गई है बहुत सुंदर तरीके से। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवान के अलग अलग अंग हैं उनमें से जो भगवान का वक्षस्थल है, भगवान की जो छाती है जहां पर लक्ष्मी देवी का निवास है, भगवान की छाती की तुलना धर्म से की गई। और ये एक प्रसिद्ध कथा हुई जब पूरी सृष्टि के बड़े बड़े दिग्गज एकत्रित हुए और वो ये निर्णय पर आना चाह रहे थे कि जो तीन गुणावतार है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से सर्वोपरि कौन है तीनों में से। उसी समय भृगु मुनि उन्होंने प्रवेश किया उस सभा में, तो इन्होंने कहा भृगु मुनि जो इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े मुनि हैं, क्यों ना हम इनको पूछें। तो जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय आपको देना होगा, मैं इन तीनों का परीक्षण करना चाहता हूं, इन तीनों को मैं कसौटी पर रखना चाहता हूं, फिर मैं आऊंगा बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सर्वोपरि है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो गए, सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी, और उन्होंने ठान लिया था कि मैं अलग अलग तरीके से इन तीनों का अपराध करूंगा और अलग अलग इंटेंसिटी का अपराध करूंगा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी से मिलने जाते हैं, अब ये उनके ही पुत्र हैं, ब्रह्मा जी से मिलने जाते हैं तो बिना कोई खटखटाए सीधा घुस गए अंदर, कोई दंडवत नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कुछ नहीं। जैसे कई बार बच्चे हाय डैड, वैसे तो नहीं बोला ऐसे। तो ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं, लेकिन उनको लगा कि कितना बदतमीज है ये। तुरंत भृगु मुनि समझ गए, अफेक्ट हो गई, ये इनके अंदर बैलेंस नहीं रहा, छूट गया बैलेंस इसका। बोले नहीं लेकिन अंदर से इनको बुरा लग गया। अब वो गए शिवजी के पास, शिवलोक। अब शिवजी जो हैं वो ब्रह्मा जी से ऊपर हैं हर स्तर में, ये वो जानते थे। तो अब इनकी जो परीक्षा है, इनका क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ होना चाहिए, ये उन्होंने सोच लिया कि शिवजी का क्वेश्चन पेपर टफ होना चाहिए। तो जब शिवजी अब बैठे हैं पार्वती के साथ, जैसे शिवजी ने भृगु मुनि को आते हुए देखा तो शिवजी खड़े हुए भृगु मुनि को आलिंगन करने के लिए, कह रहे हैं मेरे भाई आए हैं। तो भृगु मुनि है दूर, क्या पता नहीं ये कब्रस्तान की भस्म लगाए हुए, खोपड़ियों की माला पहने हुए, दूर। इस तरीके से शिवजी के साथ इस प्रकार का अपमान, त्रिशूल निकाल लिया उन्होंने। एक खोपड़ी कम पड़ रही थी यहां पर। तो पार्वती उन्होंने रोक दिया कि अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये सब दिखावा है, ये नाटक कर रहे हैं, आप फेल हो गए हैं एग्जाम, रिजल्ट अभी निकल गया। तब फिर शिवजी जान गए तो वो संभल गए। तब फिर भृगु मुनि आगे चलते हैं, अब वैकुंठ, यहां पर आप जो देख रहे हो वह भृगु मुनि हमारे, वैकुंठ पहुंचते हैं। और वहां पर अब सबसे कठिन क्वेश्चन पेपर भगवान विष्णु के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विष्णु लेटे हुए हैं अनंत शेष पर, लक्ष्मी देवी उनके चरणों को संभाल रही, मालिश कर रहे हैं, और भृगु मुनि सीधा कूद पड़ते हैं और भगवान विष्णु के छाती के ऊपर एक लात मारते हैं। जैसे दुलत्ती होती लात मारते हैं। लक्ष्मी देवी तो आग बबूला हो जाती, ये कौन है, ये इसकी हिम्मत। परंतु विष्णु वो तुरंत उठते हैं और सबसे पहले भृगु मुनि के चरणों को संभालते हैं। वो कहते हैं कि शायद मेरी छाती जो इतनी कठोर आपके चरणों को ठेस पहुंची होगी, मैं पहले इनको संभाल लूं, कुछ आपको लगा तो नहीं। सिद्ध हो गया कि इन तीनों गुणावतारों में से सर्वोपरि हैं भगवान विष्णु। परंतु लक्ष्मी देवी क्रोधित हो जाती हैं और लक्ष्मी देवी कहती हैं क्योंकि आपके वक्षस्थल पर धर्म निवास करता है और क्योंकि भृगु मुनि ने आपके वक्षस्थल पर प्रहार किया है, इसलिए इस पृथ्वी लोक पर जिनके आप गुणावतार हो धर्म की ग्लानि होती रहेगी और विशेष रूप से ब्राह्मणों से शुरू होगी, पतन वहां से होगा शुरू। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि जो ब्राह्मण होंगे मैं कभी निवास नहीं करूंगी उनके घर पर। कि कौन? लक्ष्मी। इसलिए बचपन में भी आपने स्टोरीज पढ़ी होगी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण, है ना, वो गलती से नहीं लिखा ऐसे, अकस्मात नहीं आया। कभी आपने पढ़ा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रिच ब्राह्मण, ऑलवेज पुअर, इसके पीछे स्टोरी है। तो वक्षस्थल, भगवान के जो वक्षस्थल हैं श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के अनुसार, वहां निवास धर्म का है और वहां पर जो प्रहार या धर्म पर जो प्रहार, भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार है। जैसे भृगु मुनि ने भगवान के वक्षस्थल पर अपनी लात मारी, तो आज भी यदि जो धर्म का पालन नहीं कर रहा वो कर क्या रहा है, अपने कर्मों से भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल पर लात मार रहा है। और ये है धर्म की ग्लानि की शुरुआत, ये तो शुरुआत है। अब हमने मनुष्य जीवन के जो चार पुरुषार्थ हैं इसकी चर्चा की थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब देखिए इसमें अंततः मोक्ष की तो कोई चर्चा ही नहीं करता आजकल, तो नीचे भी चर्चा नहीं, ऊपर वाले की भी चर्चा नहीं, खाली अर्थ और काम चाहिए। और ये अर्थ और काम ये केवल हमारे जीवन यापन के लिए बताया गया है, ये हमारे मूल उद्देश्य नहीं है मनुष्य जीवन का, फॉर सर्वाइवल। इसलिए जब धर्म के आधार पर अर्थ कमाया जाए और उस अर्थ को जब काम में उपयोग किया जाए, तब जाकर मोक्ष तक वो व्यक्ति पहुंचेगा, नहीं तो चार स्तर जो हो रहे हैं अनर्थ के, हमने किसके देखे थे, पुरुषार्थ के, तो चार स्तर अनर्थ के हैं अभी। आजकल कलयुग में विशेष रूप से देखेंगे आप, अधर्म, अधर्म के वजह से अनर्थ, अनर्थों के वजह से व्यक्ति पाप कर रहा है और फिर मोक्ष के बदले जा कहां रहा है। कितना भी लिख दो स्वर्गवासी हैं, स्वर्गवासी, बेधड़क लोग लिख देते हैं स्वर्गवासी, बहुत रेयरली लोग आजकल स्वर्ग भी पहुंच पा रहे हैं, आध्यात्मिक संसार तो छोड़ दो। तो यहां पर धर्म की ग्लानि के अलग अलग स्तर बताए गए। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतोपि स। इस सुंदर श्लोक में बताया गया है, श्रीमद् भागवत का श्लोक है ये, नेहयत कर्म धर्माय न इह कर्म धर्माय। जो मनुष्य अपने कर्मों को धार्मिक नहीं बना रहा या कर्मों से धर्म की स्थापना नहीं कर रहा और उस धर्म के वजह से न विरागा या उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा, तो वो कैसा व्यक्ति है? बहुत ग्राफिक एग्जाम्पल दिया गया, वो व्यक्ति जीवन अपि मृतोपि स, वो जीते जी मुर्दा, जिंदा मुर्दा, जो अपने कर्मों को धर्म में और धर्म को वैराग्य में नहीं लगा रहा, वो जीते जी मरा हुआ। या जैसे अप्राणस्य इह देहस्य मंडनम लोकरंजनम, उस श्लोक में बताया गया है कि जो केवल अधर्म को सजा सजा कर रख रहे हैं आजकल, अधर्म की मूर्तियों को सजा सजा कर उसको कह रहे हैं कि ये है सुंदरता, तो वो कर क्या रहे हैं? वो कर रहे हैं अप्राणस्य इह देहस्य, कि जो देह से प्राण चला गया है अर्थात मृत शरीर, उसको सजा रहे हैं। पाश्चात्य देश में हो रहा है ये, मृत शरीरों को सजाया जाता है, उनको बोलते हैं अंडरटेकर्स, ये प्रोफेशन है उनका। एक हमारे इस्कॉन के भक्त, वो पहले वही थे, अभी वो डिवोटी बन गए, वो पहले एक अंडरटेकर मतलब जो मुर्दे आते हैं उनके पास, उनको उनकी जिम्मेदारी है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्स है उनका मुर्दों को सजाने का कोर्स। तो मुर्दों को 3-piece सूट पहनाएंगे, उनको फ्रेग्रेंस परफ्यूम वगैरह, लास्ट में एक स्माइल देंगे उनको। तो स्मशान वैराग्य थोड़ा बहुत आना था, वो भी नहीं आएगा, वो लोग आते हैं वहां पे क्या हंसते हंसते मरा है। तो देखिए वो श्लोक में जो कहा गया है सही कहा गया, अप्राणस्य इह देहस्य मंडनम लोक रंजनम, कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं वही लोक रंजन, वही उसमें रंजन लेंगे। किसमें? मृत, सजा हुआ मृत देह। अब जो ये ग्लानि शब्द है, ये थोड़ा कॉमन वर्ड नहीं है, हम लोग इतना यूज नहीं करते, इसलिए हमारे जो टीकाकार हैं उन्होंने बहुत सुंदर, हमारे समझ में आ सके ऐसी उत्प्रेक्षा इस शब्द की गई। तो तीन इसके अर्थ बताए हैं, निर्बलता, लज्जा और अपमान। तो भगवान जो आज के श्लोक में कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, धर्मस्य ग्लानी, भगवान कह रहे हैं कि जब धर्म निर्बल बनता है, जब धर्म की लज्जा वो लुटी जाती है, जब धर्म का अपमान होता है, उसे कहते हैं धर्मस्य ग्लानी। तो अब हम एक एक, ये जो अर्थ है ग्लानी के, तीन अर्थ हैं, एक एक अर्थ को लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले धर्म ग्लानी, धर्म की निर्बलता, ये जो पहला अर्थ बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद के अनुसार, फोर पिलर्स ऑफ अधर्म वीकेंस द फोर पिलर्स ऑफ धर्म। तो यहां पर अर्थ है निर्बल, वीक बनाना। तो हम हमारे गीता कोर्स में इसको सुनाते हैं, तो आज के पॉइंट से ये संबंधित है। तो अधर्म और धर्म, यदि हम ये कहें कि धर्म का एक महल जो कि चार खंभों स्तंभों पर खड़ा है, तो अधर्म का महल भी चार खंभों पर खड़ा है। यदि धर्म का महल खड़ा है तो अधर्म का महल भी खड़ा है, परंतु अधर्म के महल के जो चार खंभे हैं ये धर्म के महल के चार खंभों को तोड़ रहे हैं। शांति से वो नहीं खड़ा अपना, खड़े खड़े धर्म के महल के खंभों को तोड़ रहा या निर्बल बना रहा। तो प्रभुपाद ने अक्सर अपने प्रवचनों में बताया, मांसाहार मीट ईटिंग इज द फर्स्ट पिलर ऑफ अधर्म विच वीकेंस द मर्सी पिलर ऑफ धर्म। सो बिकॉज ऑफ मीट ईटिंग मर्सी इज डिस्ट्रॉयड। सेकेंडली gambling, second pillar of adharma weakens the second pillar of dharma, truthfulness. कभी आपने सुना है मैं बहुत ईमानदारी से जुआ खेल रहा हूं? It's a joke. Intoxication, which is the third pillar of adharma, weakens and destroys the third pillar of dharma, which is austerity, tapasya, discipline, control, self-control. Illicit sex, this is the fourth pillar of adharma, which destroys the fourth pillar of dharma, which is cleanliness. Cleanliness of the mind, cleanliness of the heart, cleanliness of the body. तो देखो कितना एकदम proportionate, उपयुक्त ये दोनों धर्म और अधर्म के महलों के ये खंभे बताए गए हैं। तो भगवान जो बोल रहे हैं धर्मस्य ग्लानी, तो धर्मस्य ग्लानी का अर्थ क्या है कि जब अधर्म समाज में आ जाता है या समाज में अधर्म का पालन होता है तो कैसे वो धर्म को निर्बल बनाता है, वीकन्स। अब हम थोड़ा और इसमें गहराई में जाकर थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो निर्बलता इसकी शुरुआत कैसे होती है। हम में से यहां पर उपस्थित बहुत से लोग बोल रहे होंगे भाई हम तो वो अधर्म के महल के बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं जरूरी कि हम धर्म के महल में पहुंच चुके हैं। तो कहां से ये शुरुआत होती है निर्बलता की, हाउ धर्म स्टार्ट्स टू वीकन इटसेल्फ। अधर्म जो है आजकल आप देखो तो ये सारी चीजें इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये सारी चीजें जो हैं और इसके जो ब्रांचेस सब ब्रांचेस हैं वो लोग क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एंड धर्म इज ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन। तो क्योंकि आजकल के समाज में हम लोग सब चीज इतना इंस्टेंट अनुभव करते हैं, है ना, जैसे मैंने बटन दबाया इंस्टेंटली सब चेंज हो रहा है, स्लाइड्स आ रहे हैं जा रहे हैं। आजकल क्या है, एवरीथिंग फिंगर टिप्स, कंप्यूटर फिंगर टिप्स, सेलफोन टच स्क्रीन आ गया, अभी तो वो भी नहीं है, बोल दो खाली चालू हो जाएगा आजकल ऐसा है, वॉइस सेंसर। तो क्योंकि सब कुछ इतना इंस्टेंट, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट सूप, इंस्टेंट गुलाब जामुन, इंस्टेंट ढोकला, इंस्टेंट सब कुछ इंस्टेंट हो रहा है, इंस्टेंट डेथ। So everything we want instantly. इसलिए रिश्तों में भी देखिए, रिश्तों में भी आजकल लोगों का वो मेंटेलिटी ऐसा हो गया है कि क्योंकि सब कुछ इंस्टेंटली उपलब्ध करा के दिया जा रहा है, तो रिश्तों में भी वो लोग जिस प्रकार से वो मशीन यूज कर रहे हैं जो इंस्टेंटली सब कुछ उनको दे रही है, तो रिश्तों में भी वही आ गया कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए मेरे जीवन में जो मुझे इंस्टेंटली खुश कर दे, इंस्टेंटली चाहिए सब कुछ। इसलिए लैंग्वेज भी वैसे यूज करते हैं। इफ आई डोंट लाइक समवन आई डिलीट दैट पर्सन फ्रॉम माय हिस्ट्री, कंप्यूटर की लैंग्वेज। इफ आई लाइक समवन आई वांट टू डाउनलोड हिम इमीडिएटली, डाउनलोडिंग कॉपी पेस्ट कट पेस्ट, कट पेस्ट भी हो जाता है। रिश्तों की बात कर रहा हूं, तो इसलिए सब लोग क्या देख रहे हैं कि मुझे एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है विशेष रूप से भारत में, भारत में ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मुझे धर्म का टैग भी चाहिए, वो भी जाना नहीं चाहिए क्योंकि क्या है भारत में हूं तो आई वॉन्ट द फ्लैग ऑफ धर्म ऑल्सो समवेयर लर्किंग अराउंड। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, स्पेशली इन इंडिया वी फाइंड अनफॉर्चुनेटली सम पीपल दे वॉन्ट धर्म इन देयर लाइफ लाइक गार्निशिंग ऑन द मेन मील ऑफ देयर सिन। अगर उनका जो भोजन पका हुआ है पूरा अधर्म का उसके ऊपर थोड़ा छिड़का दो, क्या कोथमीर छिड़काते ना पोहे के ऊपर, नारियल और कोथमीर, इट्स कॉल्ड गार्निशिंग। सो ऑन द मेन मील ऑफ अधर्म मेनी पीपल दे वांट टू पुट धर्म एज गार्निशिंग, दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा कि हाँ भाई ये थोड़ा कल्चर्ड तरीके से सब करता है जो भी करता है। मुझे हाल ही में एक व्यक्ति बोल रहे थे वाइन, हाउ कैन यू से वाइन इज इंटॉक्सिकेशन, मेरे से आर्ग्यू कर रहा था, वो बोल रहा था वाइन इंटॉक्सिकेशन कैसे, वी आर लिविंग इन वाइन सिटी, नासिक क्या है दुर्भाग्यवश नासिक इसलिए फेमस हो रहा है आजकल, वाइन सिटी सपोज टू बी डिवाइन सिटी। तो वो मुझसे आर्ग्यू कर रहा है वाइन इज जूस फ्रूट जूस, तो मैंने कहा देन व्हाई इट्स कॉल्ड वाइन, फ्रूट जूस क्यों नहीं बोलते, बाकी को तुम फ्रूट जूस बोलोगे और इसको जो अलग प्रोसेस कर दिया इसको वाइन क्यों बोलते हैं फिर। तो देखिए ये जो चल रहा है आजकल कि मुझे जस्टिफाई करना है मेरा धर्म, जस्टिफाई करके तो मुझे हर चीज का कॉम्बिनेशन चाहिए। कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए कि मुझे एक पति कहता है मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो दिखने में ऐश्वर्या राय जैसी हो लेकिन घरेलू हो, तो पति कहता है आई वॉन्ट अ वाइफ हु शुड बी as good looking as Aishwarya Rai and as hard working as Shanta Bhai. अच्छा wife क्या बोलती है, I want a husband who should be as wealthy as Mukesh Ambani and as silent as Manmohan Singh. Perfect combination. अब क्या करे बेचारे, इतना घोटाला चल रहा है क्या बोले किसको क्या बोले, चुप रहते हैं बेचारे, चुप्पी साधे हैं इतने 5 साल से, ज्यादा हो गए उससे भी। तो उनको एक बार पूछा गया कि इतना घोटाला चल रहा है ये चारा घोटाला, ये 2G स्कैम, 3G स्कैम, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, खा रहे इतने पैसे देश के। तो उन्होंने कहा, मेरी माँ ने कहा है खाते समय बोलते नहीं। खाते समय इसलिए हम चुप रहेंगे, बिजी हैं, मुंह बिजी है अभी। तो इसमें ये जो धर्म की ग्लानी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और ग्रेजुअली जो प्यूरिफिकेशन, इसमें जो दो प्रकार की क्वालिटीज, रेस्टलेस एंड इम्पेशेंट, पीसफुल एंड पेशेंट। तो आजकल लोगों के अंदर इतना ज्यादा एग्रेशन आ गया है ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से, कि जब उनको वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एकदम तुरंत इंद्रिय भोग वो नहीं दिखता, या धर्म में क्या हो रहा है, शनै शनै उपरि मे, भगवान कहते हैं ग्रेजुअली ग्रेजुअली, शनै शनै, भगवान गीता में जो बोल रहे हैं, ग्रेजुअली वन बिकम्स प्यूरिफाइड। इसलिए आप देखो लोग इस्कॉन में आते, 16 माला कब से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, पूछा 6 महीने से कर रहे हैं, और इस संसार में कब से हो, अनंत काल से यहां पर, और अभी 1 साल 6 महीना हुआ और हम लोग प्रश्न पूछते हैं भगवान बांसुरी कब बजाते हुए आएंगे। मेरी रासलीला कब चालू होगी। सो बिकॉज ऑफ बीइंग अकस्टम टू बीइंग सो रेस्टलेस एंड इम्पेशेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो धर्म विच टॉक्स अबाउट ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन विथ पीस एंड पेशेंस। इसलिए आजकल हम लोग ये जो यूनिवर्सिटी में प्रचार करते हैं, वहां पर देखा जाता है कि आजकल के बच्चे वो ज्यादा समय तक बैठकर ध्यान से सुन नहीं सकते, उनको कुछ समय बाद क्या होता है कि अचानक सेलफोन निकाल लेंगे, और कुछ तो कुछ भी नहीं, कोई कोई कॉल नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अचानक सेलफोन निकाल के, कि आपने देखा कई बार कुछ लेक्चर थोड़ा ज्यादा चल रहा है, अचानक सेलफोन निकाल के देखते रहे, चल रहा है क्या, चल रहा है क्या, चल रहा है, तुम बैठे रहो, तुम कहां चल रहे हो, या फिर यहां वहां, वो सब क्यों है, क्योंकि ये जो मीडिया है, हम थोड़ा उस पर आएंगे अभी, ये मीडिया हमको इतना ज्यादा रेस्टलेस बना रहा है, क्योंकि हर चीज चैनल चेंज करने के लिए बटन है, आपको किसी व्यक्ति से बात नहीं करना, डिस्कनेक्ट करने के लिए बटन है, कनेक्ट करने के लिए बटन है, हर चीज के लिए सब बटन है, कपड़े साफ करने के लिए बटन है, बर्तन साफ करने के लिए आजकल डिश वॉशर है, उधर भी बटन है, सब जगह बटन कल्चर। तो इसके लिए हम लोग जब किसी आध्यात्मिक प्रोग्राम में भी आते हैं तो बटन ढूंढते हैं, कृष्ण प्रेम कौन से बटन से मिलेगा, मोक्ष कौन से बटन से मिलेगा, ये इतने देर से बड़बड़ कर रहा है, कौन सा बटन दबाओ, बंद करे उसको। तो ये जो धर्म की निर्बलता, इट्स बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल व्हिच यू आर अकस्टम टू, एंड अनअकस्टम टू ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन। अभी आपके सामने मैं एक दो वीडियो दिखाने वाला हूं। एक साइकैट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हुए पाश्चात्य देश के, तो उन्होंने ये, आप पढ़ रहे हो जो मार्शमेलो टेस्ट, बच्चों के ऊपर किया, बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट ये। मार्शमेलो ये अमेरिकन पेड़ा, हम लोग जैसे पेड़ा होता है ना हमारा, वैसे वहां का एक स्वीट मीट है ये, अमेरिका का, सफेद रंग का दिखने वाला, पनीर के जैसे दिखता है, तो अमेरिकन पेड़ा ये समझ लो आप। तो ये टेस्ट हुआ बच्चों के ऊपर, बच्चों के ऊपर ये टेस्ट इस प्रकार से किया गया कि छोटे बच्चों को जो उनको बहुत पसंद था वो मार्शमेलो, तो उनके सामने मार्शमेलो रखा और उनको कहा कि यदि तुम रुकोगे मेरे आने तक, टीचर ने कहा मेरे आने तक अगर रुकोगे तो तुमको दूसरा भी मिलेगा, और अगर तुम नहीं रुके तो बस एक ही तुमको मिलेगा, लेकिन अगर तुम रुकोगे तो तुमको दो मिलेंगे। और इन्होंने क्या किया, जो भी वो टीचर ने वो मार्शमेलो रखकर, टीचर बाहर गया और हिडन कैमरा लगाए हुए थे, तो हिडन कैमरा से उन्होंने देखा कि कितने लोग रेजिस्ट कर पाते हैं, सामने पड़ा हुआ है ना अभी, बिना खाए, किसके लिए, ताकि मिलेगा। तो यहां पर हम लोग चर्चा किस पर कर रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कैसे वो उस मार्शमेलो को देखकर निर्बल होते जाता है, दुर्बल होते जाता है, और फिर उनका जो ये टेस्ट हुआ कि उन्होंने देखा कि 10 में से 3 लोगों ने रेजिस्ट किया और वो रुके नहीं खाए, फिर उनको रिवॉर्ड में दूसरा मिला गया। फिर 20 साल बाद जब उन 3 लोगों, 3 बच्चों का लाइफस्टाइल देखा तो वो लोग सक्सेसफुल थे हर तरीके से, और ये जो बाकी के साथ, ये जो रुक नहीं पाए, तुरंत खा लिया वहां पर, देवर मोस्टली अनसक्सेसफुल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ बिकॉज दे यूज्ड टू बी अट्रैक्टेड टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, धर्मस्य ग्लानी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये टेस्ट, तो ये एक्चुअल लाइव टेस्ट का हिडन कैमरा से वीडियो निकाला हुआ है, तो आपको दो वीडियो दिखाएंगे, पहले वीडियो में सिंगल इंडिविजुअल चिल्ड्रन और फिर दूसरे वीडियो में जब दो लोग एक साथ बैठते हैं उसी टेस्ट में तो वो किस दौर से गुजरते हैं।
We decided to see if there's a visual of what it's like in the midst, after, before, the whole way temptation works. And so each of these kids, unknown to them, is a hidden camera in this room. And while they're in this room, Jeffrey offers them a marshmallow. And he says, you can have this marshmallow. There's no problem. You can eat it now. But if you won't eat this marshmallow right now, I'll come back in a little while and I'll give you another marshmallow and you can have two. So it's the temptation of fulfilling that need right then or waiting later for something that's better. Anyway, just watch this video. Isn't that great? Now, what's so interesting is this is the same principle that's behind the lure of the first temptation that the tempter throws at Christ. See, there's a legitimate need that needs to be met, but then there's that temptation for all of us that we face, just like what the tempter throws at Christ, and that is to meet this legitimate need in an illegitimate way. To meet it in a way that's not according to God's plan, that's not according to God's purposes, it's not what God wants. To meet this temptation in a way that is dishonoring to the Lord. And so faced before us, now you say, well, it's, you know, just the thing with marshmallows. Well, here's the thing. Out of all the kids, I asked Jeffrey, there's like, I think it's 12 to 15, something like that. Three of the kids waited. And that waiting really is based on something more than just what's sitting before them. It's the belief and the trust that if I wait on the other side, I trust that I'll get what you said, that what will happen is you'll take care of me. It's the trust. It's like the one little boy I love. He says, I'll wait. And he's one of the ones that did, and he got the sandwich at the end, you know, the little chocolate marshmallow sandwich. But it was the whole thing of he believed Jeffrey. He believed that Jeffrey would come back, that Jeffrey would do what he said he was going to do, and that Jeffrey was not just making it up, and that Jeffrey would take care of it. Now, legitimate need. I mean, what kid doesn't want to fix, you know, their sugar need? It's like, all right, great. Love to have some sugar. But the response was not even in this situation that it's even wrong. It was even lighter than a typical temptation. It was, hey, you're free to eat that. You're not in trouble. Go ahead. But if you'll wait, it's that patience and waiting thing. There's something better on the other side.
एक और दिखाएंगे जिसमें दो दो बच्चों को एक साथ ये टेस्ट पे रखा गया है.
Good. Okay, so here's the deal. There's a marshmallow. You can either wait, and I'll bring you back another one, so you can have two, or you can eat it now. So you can eat it now, or you can wait, and I'll bring you back two. Okay?
Okay.
Okay, I'll be back. Okay, so I have one marshmallow for each of you.
Okay.
One. Don't eat it. And here's the deal. You can either eat it now, or you can wait till I get back, and you can have two. Okay?
Okay.
So eat it now or wait till I get back and you can have two. And I'll be back in a little
bit. If we wait, you'll give us two?
Yep, if you wait, you get two. Or you can eat it now, whichever you want. Okay? I'll be back in a little bit.
I'm gonna wait. But if you wait until she gets back, she'll give you two. She still won't give you two because you ate it. So Moses, and I didn't eat a single bite of mine. So go show her, okay?
I'm gonna go and then I haven't found marshmallows yet, so I'm going to look for some more. But you stay here, and if you haven't eaten that one, I'll bring you back another one, okay? I'll be right back.
सीरियस उनकी स्टडी हुई है बच्चों के ऊपर, जैसे आपने देखा, और फिर बड़ों के ऊपर भी हुई, और बड़ों के ऊपर उन्होंने शराब के साथ किए टेस्ट, कि शराब रखा गया और उनको बोला गया कि अगर आप 15 मिनट रुकते हो तो आपको एक और पेग मिलेगा, और बहुत से लोग उसमें फेल हुए। खैर, वो जो चीजें रखी वो अलग बात है, परंतु उनका जो प्रिंसिपल वो जो बता रहे थे कि धर्म की ग्लानी उसकी दुर्बलता निर्बलता उसकी शुरुआत कहां से होती है, जब अधर्म को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, और इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि वो हमें आकर्षित करता रहे। तो यहां पर हमने यही देखा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अगेंस्ट ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन, विच ऑलवेज क्रिएट्स अ डायकोटोमी इन अ पर्सन्स माइंड। अब धर्म ग्लानी का जो दूसरा मतलब बताया वो क्या, धर्म की लज्जा जब हीन हो जाती है। तो यहां पर हम महाभारत से द्रौपदी का उदाहरण लेंगे। द्रौपदी वस्त्रहरण, कि द्रौपदी का वस्त्रहरण वहां से शुरुआत हुई। ये जो दूसरा अर्थ है धर्म ग्लानि का, कि कैसे लज्जा जब नष्ट हो जाती है तो जो धार्मिक कार्य हैं उसको करने के लिए लोग शर्माते हैं, और अधार्मिक कार्य करने के लिए बेशर्म हो जाते हैं। और इसकी शुरुआत महाभारत में वर्णन है उस असत सभा से हुई जहां द्रौपदी के वस्त्रों का हरण करने की चेष्टा की गई, और उस समय द्रौपदी ने श्राप दिया था कि जो यहां पर मेरी विवशता के ऊपर हंस रहे हैं उन्हीं का विनाश का कारण मैं बनने वाला। तो वहां पर द्रौपदी की तुलना धर्म से की गई है, और द्रौपदी वस्त्र हरण की तुलना धर्म ग्लानी से की गई है। लाइट्स,
स्त्री पुरुष का सौभाग्य है, जीवन का मधुर राग है। जिस समाज में इसका सम्मान ना हो उस समाज का दुर्भाग्य है। इसकी मर्यादा से ना खेलो, इसके आंसुओं में आग है।
तुमने द्रौपदी की विवशता देखी है, अब मैं तुम्हारा विध्वंस देखूंगी।
ये गाथा है द्रौपदी के अपमान की।
तो हम सब ये जानते हैं, आप लोग ने देखा भी होगा द्रौपदी का जो अपमान हुआ वो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण बना महाभारत के युद्ध का, जहां पर उस असत सभा में जो शामिल हुए पांडवों के अलावा जो विवश थे, द्रौपदी की तरह विवश बनाए गए थे, परंतु उसके साथ साथ और जो विवश नहीं थे, जिनके पास उस दिन अधिकार था, भगवान श्री कृष्ण ने, हालांकि कर्ण, दुशासन, दुर्योधन ये तो उस गिनती में नहीं आते, परंतु फिर भी भीष्म पितामह इत्यादि महात्मा विदुर, उन सब को भी भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि उस असत सभा में आप लोग धर्म की जो ग्लानी हुई उसमें आप लोगों का भी योगदान चुप रहकर हुआ। तो इसलिए अब हम द्रौपदी वस्त्र हरण के विषय में जो इतना सुने, एक है उस असत सभा में धर्म की ग्लानी, लज्जा का हरण होना, और फिर हम लोग जो आज देख रहे हैं स्त्री, भारतीय स्त्री जो हमारे टीवी मीडिया में उसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये सब देखकर आप लोगों को मंदिर में अचरज हो रहा होगा, लेकिन टीवी में अचरज नहीं होता देखते समय, है ना। जब हम लोग टीवी में देखते हैं तो टीवी में अचरज नहीं होता, मतलब हम तो इससे आगे नहीं दिखा सकते मंदिर के अंदर, लेकिन सत्य बात ये है कि ये भारत देश जहां भारतीय नारी का सत्कार होना चाहिए, आदर होना चाहिए, वहां पर आजकल मीडिया के द्वारा, स्पेशली बॉलीवुड के द्वारा, भारतीय नारी को केवल एक नुमाइश की चीज बना दी, अ प्रोडक्ट ऑफ एग्जिबिशन। और इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे यही सिद्ध हो रहा है कि जब हम न्यूज में, पेपरों में ये सब पढ़ते हैं कि अरे इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने बलात्कार बढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद भी बलात्कार कम नहीं हो रहे हैं, बेशर्मी कम नहीं हो रही है लोगों की, तो बेशर्मी कम कब होगी, जब हमने जो वो बात कही थी कि धर्म का जब प्रोपोगेशन, अधर्म का जब प्रोपोगेशन शुरू होता है कि हां मनोरंजन के नाम पर ये सब कुछ चल रहा है। और इसलिए जब हम लोग देखते हैं कि ये लोग जिनको हम आदर्श मान रहे हैं, आजकल लोग आदर्श मान रहे हैं, कैसे कि हां हमको इनके जैसा सुंदर बनना है, हमको इनके जैसा यशस्वी बनना है। कितने विद्यार्थियों को जब हम प्रचार करते हैं तो उनको पूछते हैं कि आपके हॉस्टल रूम्स में, आपके लॉकर्स में किसके फोटोएं आप रखते हो जिसको आदर्श बनाते, इन सब की रहती हैं। और मैं ये बात कर रहा हूं जब मैं इतने साल पहले जब बंबई में हॉस्टलों में जाके प्रचार करता था, कमरों में पूरे दीवारें भरी हुई है सब इन सब चित्रों से, तो क्या वो लोग देख रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या अपने जीवन में अपनाना चाह रहे हैं, यही अपनाना चाह रहे हैं कि हां भाई हम लोग बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। पाश्चात्य देश में जब हम प्रचार करने जाते हैं तो अधिकांश भारत देश किस लिए फेमस हो रहा है आजकल? क्रिकेट स्टार्स एंड मूवी स्टार्स, इनके लिए फेमस हो रहे हैं। हाल ही में एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, बहुत सुंदर आर्टिकल है ये। ये आर्टिकल एक परिवार का एक सीन दिखाया गया है, जहां पर पति पत्नी, पत्नी जो है वो एक स्कूल में टीचर है और वो लौटती है कुछ पेपर लेकर, परीक्षा के कुछ पेपर लेकर घर पर लौटती है, और पति जो है वो टीवी देख रहे हैं। शाम का समय है तो पत्नी पेपर चेक कर रही है और चेक करते समय उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो पति पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? तो पत्नी ने कहा, आज मैंने बच्चों को ऐसे लिखने के लिए कहा था निबंध, और टाइटल था ऐसे का, भगवान से यदि आप कुछ मांगना चाहो तो क्या मांगोगे, भगवान आ जाए। तो बच्चों को मैंने कहा था इस पर एक ऐसे लिखो कि क्या मांगोगे। तो एक बच्चे ने, वो पढ़ रही थी उनका ऐसे, एक बच्चे ने लिखा, जब भगवान आएंगे मेरे सामने तो मैं भगवान से मांगूंगा कि मुझे अगले जन्म में टीवी बनाना। क्यों? क्योंकि यदि मैं टीवी बन जाऊंगा तो सबसे प्रमुख स्थान मुझे मिलेगा घर में, जो नहीं मिल रहा है अभी, और यदि मैं टीवी बन जाऊंगा तो सारे परिवार वाले कम से कम दिन में एक बार और कितनी बार एक साथ आकर मुझे देखेंगे, और जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो वो चुप होकर सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। यदि मैं टीवी बन जाऊंगा, यदि मैं टीवी बन जाऊंगा तो मेरे पिताजी जो थक कर ऑफिस से आते हैं, जो मुझे अभी टाइम नहीं देते लेकिन टीवी खोल कर बैठ जाते हैं, उनको टाइम देते हैं, तो मैं टीवी बन जाऊंगा तो कम से कम मेरे पिताजी का टाइम तो मिलेगा मुझे थोड़ा। इसलिए मैं भगवान से ही मांग रहा हूं कि मुझे अगले जन्म में टीवी बनाना, ताकि मुझे परिवार में कोई तो मेरी कदर करे जैसे टीवी की कदर करते हैं। तो वो जो हस्बैंड वो टीवी देखते हुए, उसने बोला कि बेचारा वो बेटा किसी का होगा, क्या हालत उसके माँ बाप ने की है। तो उनकी पत्नी कहती, आप जानते हैं कि वो कौन है जिसने ऐसे लिखा है? हमारा ही बेटा है, हमारा ही बेटा है जिसने ये ऐसे लिखा है। तो ये हमें इसको साधारणतः नहीं लेना है, क्योंकि जो परिणाम दिख रहे हैं आजकल, न केवल एक व्यक्तिगत स्तर पर, न केवल पारिवारिक स्तर पर, बल्कि सामाजिक स्तर पर, अखबार भरे पड़े हैं इन सब अश्लील चीजों से और ऐसी अश्लील खबरों से, और इसे और ज्यादा प्रोजेक्ट कर 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 सुनाया दिखाया जाता है, कि ताकि हो क्या रहा है कि इसके वजह से जो उस प्रकार के पाप नहीं कर रहे थे वो सब उसको देखकर और उत्तेजित होकर और वैसे पाप करना शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए प्रश्न है कि हम किसे हमारा आदर्श बना रहे हैं। ये एक छोटा सा एक और वीडियो है जहां पर यह बताया गया है कि असली मर्द कौन है। यदि कोई अपने आप को मर्द कह रहा है या हीरो बोल रहा है, जिसको लोग हीरो बोलते हैं, तो असली हीरो कौन होना चाहिए।
जिसकी आंखों में है जगमगाती हुई जैसे गहरी शराफत की एक रोशनी, जिसके अंदाज में एक तहजीब है, जिसके लहजे में नरमी है, शब्दों में तमीज है, जिसके दिल में भी और जिसकी बातों में भी औरत के वास्ते पूरी इज्जत भी है, पूरा आदर भी है, जिसको औरत के तन मन का जीवन का सम्मान है, औरत के आत्म सम्मान का जिसको हर एक पल ध्यान है, जो कभी एक पल भी नहीं भूलता, औरत इंसान है, जिसको अपनी भी पहचान है, जिसमें शक्ति भी है, जिसमें हिम्मत भी है, जिसमें गौरव भी है, आत्मविश्वास भी है, जो अगर साथ है, जो अगर पास है, उसके होने से औरत को अपनी सुरक्षा का एहसास है, वो जो औरत का एक सच्चा साथी है, एक दोस्त है, एक हमदर्द है, सच तो यह है वही मर्द है।
तो धर्म की लज्जा, हमारी चर्चा उस पर चल रही है कि हम देखते हैं कि जब कोई आजकल धर्म का पालन, हम यहां पर केवल स्त्रियों के साथ क्या हो रहा है उसके विषय में नहीं बोल रहे, हम यहां पर एक ऐसे सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं कि जिससे हमें लज्जित होना चाहिए, जिसको देखकर हमें कहना चाहिए कि लानत है हमारे ऊपर, उसको हम इतना आदर का स्थान देकर उसको अपना आदर्श बना रहे हैं। और लोगों को जब हम कहते हैं, स्कूल कॉलेज में जाके हम कहते हैं कि हम आपके विद्यार्थियों को गीता के ऊपर कुछ मूल्य शिक्षण देना चाहते हैं, तो लानत है आजकल हमारे भारत के स्कूल कॉलेजों में जहां पर हमको बोला जाता है कि नहीं ये सेक्युलर है, ये सेक्युलर है और हम लोग आपकी गीता को यहां प्रोपोगेट नहीं कर सकते। तो गीता जैसे धर्म ग्रंथ के ऊपर उनको शर्म आती है, वो लोग कहते हैं आप जैसे ये वस्त्रों में हमारे कॉलेज में आएंगे तो हम लोग को वो हमारा जो स्टेटस है हमारे स्कूल का और कॉलेज का क्या है कि इतना मॉडर्न है हमारा, वो थोड़ा स्टेटस नीचे हो जाएगा, हमको शर्म आएगी आप लोगों को वेलकम करने। और मुझे बताया गया है कि आज के स्कूल्स में उनके एनुअल फंक्शन में ये जो बॉलीवुड के नंगे नाच हैं वो कराए जाते हैं, लुंगी डांस। हमारे प्रभु जी एक बता रहे थे कि उनके छोटे से बच्चे, 2.5-3 साल का बच्चा, उसको जबरदस्ती वो बॉलीवुड के उस आइटम सॉन्ग के ऊपर डांस करवा रहे, और उनको जब बोलो कि भाई हमारे जो संस्कृति है वो संस्कृति का कितना आप लोग वहां पर अपने बच्चों को बता रहे हो, नहीं 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 हम तो सेक्युलर है, और सेक्युलर के नाम पर ये अश्लीलता जारी है। तो फिर जो भगवान कह रहे हैं कि धर्म की ग्लानी, इसलिए हमने पिछली बार भी ये बताया था, वीडियो ये स्लाइड बताया था कि ये जो ऐसे हमारे हीरो एक्चुअली हुए हैं इनको तो कोई आजकल जानता तक नहीं। मैंने हाल ही में एक छोटे बच्चे से पूछा तुमको पता है राणा प्रताप सिंह कौन थे, उसने कहा रानी मुखर्जी जानता हूं मैं। आजकल के बच्चों को हमारे भारत का इतिहास तक नहीं पता कि शिवाजी महाराज कौन थे, क्या उनका स्लोगन था, तुकाराम महाराज, ये महाराणा प्रताप इत्यादि, ये लोग सब कौन थे। खाली उनको स्कूल में सिखाया जा रहा है डार्विन्स थियरी कि हम लोग सब बंदर थे, ये इतिहास बताया जा रहा है हम लोग सब कौन थे, बंदरों से आए, और ये हम किसको आदर्श बनाकर सीख रहे हैं, उस नास्तिक डार्विन को, वो अंग्रेजों ने भेजा गया उसको हम लोग, और वो डार्विन ने ये चुराया कहां से, एवोल्यूशन थ्योरी, वो पद्म पुराण से चुराया उसने, जब अंग्रेज रूल कर रहे थे हमारे ऊपर तो उसने अपने पद्म पुराण से चुराकर उसको एवोल्यूशन थ्योरी बनाकर ये कि हम लोग सब बंदर से आए, कोई ये रामायण महाभारत कुछ नहीं हुआ, हम लोग सब बंदर थे पहले, ये सब कुछ ऑथोराइज तरीके से सिखाया जा रहा है। और गीता भागवत बताओ कि भाई रामचंद्र जी, अर्जुन, पांडव, ये हमारे आदर्श, ये तो मालूम ही नहीं है, तो फिर पालन क्या करेंगे अपने जीवन में। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये है धर्म की ग्लानी, धर्म का अपमान। ये जो तीसरा अर्थ धर्म की ग्लानी का बताया गया है, तो यहां पर हम देखते हैं रावण और दुर्योधन जैसे अधर्मी जिन्होंने जानते बूझते हुए धर्म का अपमान किया, उसको कहते हैं धर्म की ग्लानी का तीसरा अर्थ। रावण को सबने कह दिया, रावण सीता का हरण जो तुमने किया है वो रामचंद्र जी की विवाहित पत्नी है, वो धर्म पत्नी है उनकी, और तुम जो ये अधर्मिक कार्य कर रहे हो उसके वजह से पूरी लंका उसका विध्वंस होने वाला है। यहां तक कि कुंभकर्ण ने, जो कि उसका ही भाई, उसने रावण को समझाने की कोशिश की, और दुर्योधन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए गए, और दुर्योधन ने भगवान के मुख पर क्या कहा, जानामि अहम धर्म नचमे प्रवृत्ति, जानामि अहम अधर्म नचमे निवृत्ति। मैं जानता हूं कृष्ण धर्म क्या है, मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, मैं उसमें नहीं लग सकता। जानामि अहम अधर्म नचमे निवृत्ति, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। इसको कहते हैं क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वन हु इंसल्ट्स धर्म, जानते बूझते हुए। तो जब धर्म को जानते बूझते हुए उसका अपमान होता है, तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं धर्म की ग्लानी। और इसलिए यहां पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुमने जो धनुष बाण छोड़ दिया है, गांडीव को नीचे छोड़ दिया है, और हताश होकर तू जो बैठ गए हो अर्जुन, ये भी धर्म का अपमान है। इसलिए उन्होंने, बल्देव विद्याभूषण कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन के रथ पर जो हनुमान जी का ध्वज, कपित ध्वज, वो दिखाते हुए कि मैं स्वयं अपने पिछले युग में रामचंद्र जी के अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम में मैंने जो बचपन से धर्म का पालन किया, जब समय आया तो मैंने भी धनुष उठाया रावण को मारने के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए मैंने स्वयं धनुष उठाया। इसलिए तुम ये जो धर्म की बातें कर रहे हो, प्रथम अध्याय में जो अर्जुन कर रहे थे, ये जो तुम दया की बातें कर रहे हो, ये जो तुम बोल रहे हो कि मैं इनको मारने से मुझे नर्क की गति होगी, ये सब धर्म की ग्लानी है वास्तविक रूप में। इसलिए भगवान अर्जुन को धर्म की ग्लानी के इन अर्थों के द्वारा ये बता रहे हैं कि अर्जुन केवल गलत तरीके से शस्त्र को इस्तेमाल करना ही अधर्म नहीं है, सही तरीके से शस्त्रों को नहीं इस्तेमाल करना भी अधर्म है। इसलिए तुम्हारे ऊपर जो ये उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है तुम्हारे कंधों पर, कि पूरे विश्व में तुम धर्म की स्थापना कर सकते हो इस शस्त्र को उठाकर, शास्त्र के आधार पर युद्ध कर, यदि तुम वो नहीं करोगे। इसलिए जो कहते हैं ना, इरिलीजन इज नॉट बिकॉज ऑफ इरिलीजियस पीपल फॉलोइंग इरिलीजन, बट इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ रिलीजियस पीपल नॉट फॉलोइंग देयर रिलीजन। इसलिए जो गोविंद प्रभु कह रहे थे ना, अगले हफ्ते हमारे वोटिंग है, कि बहुत बार हम देखते हैं कि वोटिंग छुट्टी का दिन है तो लोग निकल जाते हैं यहां वहां बिना वोट किए, कि हमको क्या मतलब है, जो भी आए सब एक दृष्टिकोण से सारे निकम्मे हैं। तो वो बोल रहे थे कि यदि हम मौन रहेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री भी वैसे ही मिलेंगे फिर हमको। इसलिए हम ये जो लास्ट स्लाइड आपको दिखा रहे हैं, अर्जुन यहां पर अपना गांडीव छोड़ दिए, तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन अपना गांडीव उठाओ, और हम भी आपको प्रेरित कर रहे हैं, आप भी 24 तारीख को उठो और जाके अपना मतदान दो, कम से कम ये तो दिखाओ कि आपको भारत देश की चिंता है। और यही भगवान इस श्लोक के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं कि हम और कोई नहीं, हम भारत के निवासी, हम भारतीय, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले जो धर्म की ग्लानी कर रहे हैं, जो धर्म की ग्लानी हो रही है, उसको बंद करने के लिए हम कम से कम चिंता तो व्यक्त करें, और उसके पश्चात फिर शुरुआत होगी जो भगवान चाहते हैं। अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम एक निमित्त बनो इस धर्म की स्थापना करने के लिए, मैं आया हूं यहां पर धर्म की स्थापना करने के लिए, तुम निमित्त बनो ताकि ये पूरा श्रेय धर्म की स्थापना का मैं तुम्हारे ऊपर डालता हूं या तुम्हें देता हूं। तो ये है भगवान अब तक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः। और अब अगली बार हम ग्लानि के साथ साथ भगवान ने अभ्युत्थानम ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, बहुत ही सुंदर इसकी उत्प्रेक्षा हमारे आचार्यों ने की है कि ग्लानि के साथ ये शब्द को भगवान ने क्यों जोड़ा है, और इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले सेटिंग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अगले बुधवार को जैसे हमने अनाउंस किया था, हमारे मंदिर में आ रहे हैं राधा गोपीनाथ प्रभु और चौपाटी के चार टेपल प्रेसिडेंट्स में से एक हैं, और उनके दो दिन का सेमिनार रहने वाला है 23 और 24 इन दो दिन। टॉपिक है द ट्री ऑफ लाइफ, शाम को 7:30 बजे। और इसी हफ्ते हमारे भक्तिधीर दामोदर स्वामी आ रहे हैं, और 19th को आने वाले शनिवार को ये जगन्नाथ फेस्टिवल शाम को 7:30 बजे उनके द्वारा, और फिर मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम क्लास संडे को, और इवनिंग संडे फीस्ट क्लास भी 20 तारीख को उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। जय श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जाए।